स्वरूप राज्य लक्ष्मी धर्मस्थ आर्यवचसा यदादरण्यम मायामृगम जयत मन धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सामान्य अर्थ तो आप जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी इसमें निरूपित हैं। राज्य लक्ष्मी को छोड़कर धर्मस्थ आर्य दशरथ के वचनों से जो बनने चले गए, माया मृगम माया के पीछे दैतयायुष्यतम सीतक
चक्रवर्ती जी को बहुत ही आनंद आया। इसमें महाप्रभु जी के दर्शन कर लिए उन्होंने, अशुभाम अशुभ प्राणी दुष्टाम राजलक्ष्मी महाप्रभु राजलक्ष्मी को भी उन्होंने क्या किया और अदृष्ट आदि की वाणी को मानते हुए
पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो चले गए या वृंदारण्य उनमें जो महाप्रभु जी चले गए, माया मृग मृग नहीं मायया मृग्यते की माया मृग माया मृग शब्द का अर्थ जीव माया मृग और दयिता वाली स्त्री यहाँ नहीं। दूसरे अर्थ में जब चैतन्य महाप्रभु के अर्थ में ये श्लोक लगेगा तो माया मृगो जीवा तम दयितया दयाया भाव दई तत्व भाव तत्ता की दयितया कृपालुतया जो दया पूर्वक माया मृग माने जीव अरे अरे जीव हरे कृष्ण हरे राम करते हुए माया मृगम दयितम कृपालुता से दई घृणा भी अर्थ होता है कृपा कृपा दम्भ शोक में कई अर्थ हैं। तो जो जीवों पर दया करते हुए अंग धावत समग्र भारत में दौड़े अरे जीवो कहाँ जाते हो अरे कृष्ण नाम लो माया मृग के पीछे स्वयं उद्धार कर ले जो चैतन्य महाप्रभु गए मैं उनके चरणों की वंदना। माया मृगम जयत ये मन धावत वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। आज की इस व्याख्यान सभा में तो मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है, संयोजक इतनी देर से बोल रहा था, मैं तो बोल ही रहा था। पर हमारे महाराज जी की जो बहुत वर्षों से मुझ पर एक बड़ी विचित्र सी कृपा रही, ब्रजवासी होने के नाते मेरा सम्मान और बन महाराज जी के समय एक ही वेदांत जी के समय हमारी आपकी सर्वदा वहां भेज आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है। मैं अधिक समय तो नहीं लूंगा लेकिन जो भी कुछ लाया वो आपको अर्पण करता हूं। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्वद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। पहली बात तो वक्ता के चुके इस श्लोक की संगति जब तक तीन श्लोक साथ में नहीं आते नहीं हो। पहली बात ये श्लोक इकला नहीं लग सकता जब तक इसके पूर्व का श्लोक और इसके साथ संगति न की जाए तब तक वो लग नहीं सकता। ये प्रथम बात। दूसरी बात यहां पर अद्वितीय सदवस्तु श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है मस्तिष्क के निर्माण का क्या प्रयोजन है? एकमात्र कैवल्य माने मोक्ष, ऐसा अर्थ करते ही सब कुछ विचार भी होता है। विचार करने पर ही जन्माद्यस्त के स्वर्थ किए गए, विचार करने पर ही प्रेमा कुमर्थो महान जिसको लोग छोड़ चुके थे, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान इसकी स्थापना की गई। तो यहां भी जब हम विचार करते हैं तो केवल शब्द केवल भागवत में 12 बार आया है, केवल शब्द 12 बार आया। केवलम क्लेश भावना, यहां केवल शब्द मात्र अर्थ में है, कहीं केवल शब्द प्रकृति से परे है, कहीं केवलानुभवानंद, कहीं केवलाया द्वितीयाय, कहीं केवल अद्वितीय है, कहीं केवल न है भावेन, कहीं केवले परमात्मन केवल परमात्मा में। तो केवल का व्यापक स्वरूप दृढ़ गोचर होता है। कैवल्य प्रयोजनम में आइए, ये 13 बार श्रीमद् भागवत में पदांश रूप में आया हुआ एक अंश। आपको आश्चर्य होगा, वेद में केवल शब्द से कोई मंत्र प्रारंभ नहीं है। वेद में, ऋग्वेद में कैवल्य शब्द से प्रारंभ वाला कोई मंत्र नहीं है। और कैवल्य शब्द कितना महत्व रखता है, आइए को दर्शन करें। 15-16 बार यह मंत्र शब्द आया कैवल्य। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, कहीं कैवल्य को नाथ, अभी जैसा बताया कैवल्य नाथ प्रभु है, कैवल्य नाथ पार्श्व चतुर्थस्कंध। तो कहीं कैवल्य, कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति वहां आया, कहीं कैवल्य पति प्रभु है ऐसा आया, कैवल्यम अपुनर्भवम स्पष्ट आया ये मोक्ष की। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जहां कोट व्याकरण की बात आई तो आप ये समझिए तीनों लिंगों में आता है कोई भी बात। एक केवल शब्द का है जो तीन लिंग में आता है, व्याकरण में 3 लिंग है, पुल्लिंग में केवल, नपुंसक लिंग में और स्त्री लिंग में केवला राजनीति। तो केवल शब्द ऐसा है जो तीनों लिंगों में आता है। और एक विशेष बात, ये अव्यय भी है। ये तो हुआ इसका जन्म केवल शब्द का, ये कहां से आया और धातु कौन सी? केव धातु। इस केव धातु से हम अच प्रत्यय करते हैं, कहीं पर केव धातु से वृषादित्वात् कलत प्रत्यय करते हैं। व्याकरण में कलत प्रत्यय करने पर शब्द बनता है केव धातु से केवल, और केवे है कर्तरी वृषादित्वात् की केवल के शेरे की, के का अर्थ है शेर, शेर पर जो वल की, इसलिए इसका नाम हुआ केवल। के माने शेरे की, वल की, जो शेर पर नाचे, शेर पर नाचता है हमारे पर भगवान श्री कृष्ण, हम उसके आगे किसी को देखते नहीं, इसलिए केवल का अर्थ भगवान श्री कृष्ण। यह व्याकरण से सिद्ध हुआ के शेरे की वलती वा इस विद्रहे तु 50 व्यति केवलम स्त्री काफी केवला, केवली केवला ही नहीं किंतु केवली ऐसा ही बन जाता है। निश्चित अर्थ में केवल ऐसा भी प्रयोग है, केवल कौन एक नाम कैवल्यम 8 नाम है इसमें मोक्ष के। अभी एक वक्ता कह गए थे तो वो 8 कैवल्यवाची हैं। श्रेय शब्द तो बनता नहीं, प्रशस्त चत्र प्रशस्त तो बनता है, पर इसमें क्या समझा इन्होंने मुक्ति में और मोक्ष में, और श्रेय नितराम श्रेयस में ये अलग विचार का विषय हो जाता है। परम शांतकार का आदमी कैवल्यम सबको अलग हट करके रह जाना ऐसा वर्णन आया। और जैसा अभी ब्रह्म सूत्र में हमारे ब्रह्मचारी जी ने बतलाया कि ब्रह्म सूत्र ही इसके आधार अधातो ब्रह्म विद्या का जन्मांत शास्त्र तत्व समन्वयादी सदे ना शब्दम गौण से नात्मशब्दा तन्न मोक्षोपदेशात हेय स्वावचनात्वाप्ययात गत सामान्यात आनंदमय ध्यासात और लोकवत लीला कैवल्य यज्ञ कर। तो यहाँ पर वो कैवल्य मुक्ति मोक्ष के साथ हम पर्याय वाची शब्द मान लें अर्थ की रुचि हो गई कोई विचारण न करें कर्म क्यों न करें। यहां जब विचारणी कोई बात आई है तो हम विचारणी बात को यदि नहीं मानेंगे तो जन्माद्यत इस सूत्र से हम केवल ज्ञान पर सबका विवेचन कर जाएंगे और आज अंत हम ये कहेंगे सत्यम परम धीमई यहां था सत्यम परम धीमई यहां है। परम आप करते क्या है, क्या आप सत्य शब्द को बना सकते हैं, क्या कोई विद्वान एक धातु से सत्य शब्द को बना सकता है, नहीं बनता। सत्य शब्द भी एक धातु से नहीं बनता। यहां पर अस धातु और ए धातु दो दो धातु लगानी पड़ती है। जब दो धातु से बनता है सत्य तो राधा कृष्ण से बना सत्यम परम धीमहि। सत्य 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 व्रतम की व्याख्या में जब हम सो से अस भू उससे लिया का इन गतम उससे लिया य बीच में करा तुक का आगम तब बना सत्य। तो जो अद्वैत शब्द का अर्थ केवल अद्वैतवाद में करते हो वे हमारी नहीं श्री महाप्रभु जी से पूर्व वामनाचार्य जी की वाणी को पूछे। राजा ने कहा कहिए आचार्य जी इन्होंने ठीक प्रतिपादन किया अद्वितीय शब्द का। बोले हाँ महाराज आप कौन देश के महान आचार्य नृपति हैं तो अद्वितीय मैं आपको कहूं क्या आपकी पत्नी जीवित है। बोले वो तो है आपका केल नृप क्या लड़का जीवित है। बोले हाँ वो भी जीवित है। तो यथा चोल नृप सम्राट अद्वितीय योग्य भूतले जैसे चोल राजा इस समय अद्वितीय है अद्वितीय का अर्थ उसकी स्त्री उसके पुत्र और उसकी संपत्ति इससे बिना नहीं उनके संत है। इसी प्रकार से निर्गुण जो वहां से निश्चित गुण है इसलिए हम उसको निर्गुण मानते हैं। और दूर कहता है निर्गुण कौन देश को बात। इस प्रकार अब हम श्रीमद् भागवत जी को मार्ग प्रशस्त किया और कैवल्य सम्मत पथस्वत भक्त योग स्पष्ट लिख दिया। इस पद की व्याख्या में न जाने जो सीधा स्वामी चुप है इस पद की व्याख्या में इतना बड़ा विद्वान जिसने भावार्थ दीप का नाम की टीका लिखी वो विद्वान मौन क्या है। इसको लगता है कि जो बड़े लोग कहते थे कि सीधर स्वामी की आत्मा को कवर है मस्तिष्क को कवर मुझे तो ऐसा ही लगता है। केवल दो शब्द इस व्याख्या पर तन्य संतन विषय इस प्रकरण में प्रयोजन लिखा है अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत है अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन। अधिकारी कौन हुआ जिज्ञासु। विषय क्या हुआ श्री जीव गोस्वामी जी बोले ब्रह्म जीव का एकत्व लक्षण। अभेद रूप अद्वितीय वस्तु वस्तु शब्द कैसे बना वसती नीति वक्त बना वस्तु वही निष्ठा विषय वाक्य जिसका है तन्निष्ठ ब्रह्मिक ज्ञान ये सब विषय हुआ जैसा विभक्त जी कह गए। संबंध क्या हुआ वाक्य वाचक ये भाव संबंध हुआ और प्रयोजन कैवल्य माने स्वरूप प्राप्ति ये चारों धर्म क्रोध कई समूत्र प्रमुख इस श्लोक में वर्णित है। यहाँ भी स्मरणीय कराए गए हैं खास तौर से। हर लीला कथा व्राता मृतानंद सत्म इसकी व्याख्या में नहीं करूंगा, क्यों भट्ट जी बहुत संक्षेप और विस्तार के साथ स्पष्ट कर गए कि कथा में अब्दुल का आरोप है। इसके तक माने देने वाले जो सज्जन उनमें पुरत्व का आरोप है और इसका भी दाता कौन? भागवत मूल रूप। तो इसके विवेचन में ये बहुत कह चुके हैं, इसलिए अब हम तेज ही प्रयोजन है इन शब्दों के साथ। जो अन्य विद्वान कह गए थे वो ब्रह्मात्मिकत्व लक्षणम जदवस्तु तन्निष्ठम अर्थात ततोपि नृत्य पृथ्वी से तन्निष्ठम ज्ञान कर्मा जवलाश रहता केवला अनन्य भक्ता तेषां भाव कैवल्यम तदेव प्रयोजनम यस्य तत्। ज्ञान कर्मादि की अल्लाह का तेरे सज्जन ये केवल हुए और उनका भाव कैवल्य हुआ, वही प्रयोजन हुआ। हाँ वीर राघवाचारी और पदरत्नावलीकार ये वस्तु प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख तो करते हैं, प्रयोजन की चर्चा ही नहीं। बड़े अच्छे टीकाकार जीव गोस्वामी जी ने कर्म संदर्भ में ब्रह्म परमात्मा और भगवान क्या सुंदर विवेचन किया है। कभी महाराष्ट्र से सुनना वेदांत सार में अद्वितीय वस्तु तन्निष्ठ पुराण माने श्रीमद् भागवत सिद्ध किया और केवल माने शुद्ध क्रोध कैतव जो भक्त वो धर्म है उसका भाव कैवल्य है यानी मोक्षाद कामादरेद भक्ति ये इसका प्रयोजन उन्होंने सिद्ध कर दिया। कैवल्य संबंध पदस्वत भक्त योग भगवत प्रेम ही पुरुषार्थ प्रतिपाद्य है। सालों के साथ सिया जी ने अनेक वक्ता कह चुके थे। हमारे वंशीधर आचार्य ने जो टीका ली वो सब के सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की जो की जो टीका उतार करके इस विषय में केवल कार्यकारा प्रकृति संबंध रहस्य निरंजन स्वभाव भगवत साम्य प्रलक्षणा कैवल्यम तदेव प्रयोजन मित्यर्थ है। यहाँ आपने वस्तु से तत्पद वाक्य लिया सर्वज्ञ और स्वम पद वाक्य लिया अल्पज्ञ और भिन्न स्वरूप का एकत्व स्वभाव से एक सज्जन को द्वैता द्वैत का भी निरूपण यहाँ पर कर गए। स्वामी नारायण के टीकाकार वसत एक रूपे न सर्वदा की वस्तु तन्निष्ठ सर्वदा एक रूप भगवत स्वरूप प्रतिपादित उन्होंने कैवल्य का अर्थ केवल मुक्ति प्राप्ति लिखकर जो अपने प्राण बचाए। कैवल्यम प्रकृति संबंधे और जीवा नाम राहित्य मुक्त प्राप्ति की इस प्रकार से भागवत के इन समग्र टीकाकारों की बात अपनी कुछ नहीं कही। उनका वर्णन करते हुए ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीनों को बहुत अच्छा लगा है। अंतर्यामी रूप में जो प्रचुर शक्ति का अंश तो ज्ञान का ही नाम परमात्मा है। हमें ज्ञान से कोई न तो द्वेष है और न हम ज्ञान से कभी लड़ सकते हैं। हमें ज्ञान से लड़ेंगे तो आपको बिठाएंगे क्यों पागल हैं? आप यदि ज्ञान लेने नहीं आए तो आप बैठे क्यों हैं? इसलिए ज्ञान माने भी परमात्मा है। हम तो ज्ञान को भी परमात्मा मानते हैं, लड़ने की बात तो है ही नहीं। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्यामित्व या माया शक्ति प्रचुर शक्ति उसके अंश विशिष्ट ज्ञान का नाम है परमात्मा। भगवान परपूर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट ज्ञान का नाम है भगवान। ये तो नहीं लड़ती ब्रह्मे की परमात्मा की भगवान सत्य वर्ग लक्षण तद्धर्म अतिरिक्त केवल ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म। भक्त संदर्भ पृष्ठ 25 तो ब्रह्म परमात्मा भगवान जब उनमें कोई भेद नहीं है तो हमारा ज्ञान से कोई यहाँ कोई फिर लड़ाई नहीं है। हमें तो कैवल्य प्रयोजन से केवल इतना लेना है कि जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कहते हैं वो आविर्भाव स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, वे शक्तियों के विकास सहित जो आविर्भाव है उसे भगवान कहते हैं। अतएव चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिख दिया अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान 2:22:5 संदर्भ में तो जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा। कितनी अच्छी बात थी भागवत के तरफ कही भागवत का वक्ता कौन? भागवत का वक्ता वह ज्ञानी, भागवत का वक्ता परम वैराग्य युक्त श्री शुक, वह परम ज्ञानी जो संसारी नहीं था आज उसको पढ़ाई गई भागवत, जो भागवत का प्रतिपाद्य है प्रेम, भागवत का प्रतिपाद्य नाम संगीत। अन्यथा सुखदेव जैसा वक्ता ज्ञानी उसको व्यास जी बुलाती, जो निरतम उसको अध्यापयामास, पढ़ो सुख पढ़ो। पिता कहते हैं बेटे तुम ज्ञानी जरूर हो, पर बेटे बहुत ज्ञानी हो गए हो ना, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें बढ़िया चीज देते हैं, ये है श्रीमद् भागवत प्रेमा समर्थ महा। लो प्रेम सीखो। तो जब भागवत को सुखदेव जी जैसा ज्ञानी, इतना ज्ञानवान होने के उपरांत जब सीख ले आता है, तो भागवत में क्या बात थी जो सुखदेव को खल गई, सुखदेव जी को खल गई कि मुझे ज्ञान तो मिला, मुझे भक्ति नहीं मिली, मुझे प्रीति नहीं मिली, मैं उसे प्राप्त करूंगा, उसी भागवत का प्रयोजन हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। हमारे यहाँ नहीं ब्रह्मा को काम कछु हम को, नहीं ब्रह्मा को काम कछु हम को, वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है प्रेम में, ध्यान में, ब्रज की रज में रज है प्रेम में, यही प्रीत की रीत निभावनी है, बन बल्लव काज चरायो करें, सुने द्वारे न की गोहरावनी है, नद नंद की देहारी पे घिसे से, ये ज्ञान तो यहाँ भेजेंगे हम, नद नंद की देहारी पे घिसे से हमें कर्म की रेख मिटाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान। हमने अपना कुछ चाहे महाराष्ट्र के बाद बोलना मेरा उपयुक्त नहीं होगा, तो धन्यवाद ज्ञापन कोई न कोई करेंगे। महाराज मेरी दृष्टि में आज कहते हैं आप जरा मुझे साथ दें तो अच्छा रहेगा। हंस जैसे मानसरोवर में शोभित होता है, आज मुझे लगता है हमारे भक्त वेदांत नारायण जी हमारे बीच में, हंस तो आप लोग हुए, हम लोग भी समझ लो गाँव गाँव करते हैं ना, इसलिए फिर भी हंस तो हैं। तो हंसों के बीच में जैसे मानसरोवर में आपकी शोभा हो, तो विद्वन मंडली हो गई मानसरोवर, आप लोग हो गए मानसरोवर और महाराज जी हो गए हंस। अथवा मैं तो ये मानूंगा ये मथुरा में जब से आए संगीत जैसे गड़गड़े हैं और रहते कंदरा में, फिर से बहुत बना लिया है इन्होंने नगवन नाम के प्रभाव से, तो आज उनको मैं प्रणाम कर लू। हंसो यथारा जत मानसस्थ, जैसे हंस मानसरोवर में, और सिंह यथारा जत कंदरस्थ, सिंह की शोभा कंदरा में, हंस की शोभा मानसरोवर में, तथैव गौड़ी विशाल, तीसरे कर दू महाराज ये तो तीर्थ हो गया आपका, तथैव गौड़ी विशाल तीर्थ सम्राजति भाक महोदयोत्र, हमारे महाराज किसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, क्यों उन्होंने मुझे संयोजक बना दिया, संयोजक का अर्थ जानते हैं आप, औरों के लिए दुखदायी, परंतु महाराज की आज्ञा का पालन करना पड़ा, पर महाराज विद्वानों को भी क्षमा मांगता हूँ जिनके समय मैंने बहुत जल्दी जल्दी चलाई, अन्यथा मैं जानता था मैं सीधे तमूर्ते हो जाएगा, और अब मैं प्रभु से निवेदन करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें और मेरे कोई अनुचित शब्द हों तो उन्हें स्वीकार मत करना, कोई अच्छा ही हो उससे जरूर मुझे आशीर्वाद देना। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान।
वंदे हम श्री गुरु श्री वैष्णवांश रूपम साग्रजातम सगण ब्रह्मातांतं साद्वैतं सावधूतं परिजन सरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगं ललिता विशाखान्वितांश। आदरणीय परमादरणीय भागवत के रसिक एवं भावुक विद्वान सं वैष्णवगण वैष्णवीगण, आज मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण हुई। मैं जाने कैसे हमारे परम विद्वान संचालक महोदय वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी ने हमारे भावों को जानकर के पैदल ही होने की व्यक्त कर दी। बहुत जगह बड़े बड़े विद्वानों को विशेषकर के अखंडानंद सरस्वती कापात्री जी का भी हमने सुना। उन्होंने इस श्लोक को मूल बतला करके कैवल्य शब्द का अर्थ मुक्ति बतलाया और उसी को ही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन प्रतिपादित किया। हमारे मन में तीस राशि हमने इसके लिए प्रकृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का सारा साहित्य, हमने किसकी खोज के लिए श्रीजी गोस्वामी के संदर्भों को देखा, क्रम संदर्भ इत्यादि को देखा। इसके लिए हमने बल्लभाचार्य जी की सुबोधनी सीता जी को भी देखा, किंतु बड़े बड़े विद्वानों को इसमें किस तरह देखा। इसलिए हमारे मन में ये आज इच्छा थी कि किस प्रकार से विश्व प्रधान है, विशेषकर के मथुरा जो हमारे भारतवर्ष में ही विश्व के अग्रगण्य है इस विषय, उनकी सभा में इसी श्लोक का विवेचन है और सबसे एक स्पष्ट निर्देश में ये जिस श्लोक का मूल तात्पर्य क्या है। आज हम मैं प्रारंभ से ही एक विद्वानों को सुना। हमारी कुछ धारणाएं थी वो गलत थी। पहले हमारी धारणा थी मथुरा के जो विद्वान हैं वो लोग सभा के विद्वान होते हैं, वैष्णव की सभा में वैष्णव, शैवों की सभा में शैव, राजनीति के सभाओं में राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं। किंतु यह धारणा कुछ दिनों के बाद में हमारी समाप्त हो गई। सब धारणाएं जिनसे सब नहीं खुद खुले गए थे, जो जिस सभा में जब जैसा बैठते हैं वैसा ही करते हैं, अपने पार्टी नीति को दिखलाते हैं। किंतु आज हमारी ये धारणा भी निर्मित हो गई। आज यहाँ पर इतने विद्वान उपस्थित हैं, किसी के मुख से हमने वैसी व्याख्या नहीं की। आज सबको अद्भुत अद्भुत चमत्कार चमत्कार जो हमने श्रवण किए सचिव मन में गदगद हो गया। मैं विद्वान नहीं हूँ, यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं। कोई संस्कृत का सौ या अनुसार अभिशब्द भी मुझे याद नहीं, मैं जानता हूँ उच्चारण भी नहीं, कुछ भी नहीं। किंतु गुरु बच्चन गुरु जी के संग में रह करके उनकी कुछ सेवा की और ये विद्वानों के कुछ संग में मैं टिक रहा, इसलिए समझने की कुछ चेष्टा करता हूँ। मैंने देखा कैसे अद्भुत अद्भुत अर्थ यथार्थ श्रीमद भागवत के पंडित होने की है। आज मेरी धारणा वो भी समाप्त हो गई। नहीं, मथुरा के विद्वान कहते हैं सारद गहन और श्रीमद भागवत के यथार्थ ये विद्वान है। तो जैसे हमारे भक्त जी ने बतलाया ना, भागवत मोहित कर ये जीव समी का ये विचार है, अद्भुत विचार। अब इसके किसान उन्हें अधिक नहीं बतलाना चाहता, बोलना नहीं चाहता, प्रतिशन हो जाएगा। तो श्रीमद भागवत ने मोहनी रूप स्वरूप होकर के दो उसके अर्थ कई बल के प्रयोजन का बतलाया। उसमें पहला बतलाया भक्ति शिवलया या केवल भक्त, किस्मत भागवत में बतलाया केवल भक्ति। और दूसरा न बाछन की बंथन की श्लोक जो बतलाया कैवल्यम पापुंदर भवन। तो कैवल्य जो अपुनर्भव है इसका भी अर्थ कैवल्य में लिया, और उधर भक्ति केवल भक्ति अर्थात जैसे कि भक्त जी ने ये जीव गोस्वामी के विचारों से प्रतिपादित किया, ये हरि लीला कथा भ्राता एव अमृतम, यही केवल मात्र अमृत। और